ہم سب اکثر سوچتے ہیں کہ پرانی مہان کتابیں جو اتہاس میں درج ہیں انہیں کسی مہان لیکھک نے ہی لکھا ہوگا. میرا مطلب ہے جب بھی ہم کسی ایتہاسک یا کسی دھارمک گرنتھ کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک بڑی ہی صاف سی تصویر بنتی ہے.
ہاں بالکل, ایک بہت ہی شانت سا کمرہ.
Exactly.
ایک شانت کمرہ, ایک لیکھک جو اپنے ڈیسک پر بیٹھا ہے, اس کے دماغ میں کچھ بہت ہی گہرے وچار آ رہے ہیں اور وہ بس انہیں کاغذ پر اتار رہا ہے. پھر وہ کتاب چھپتی ہے, اس پر اس کا نام بڑے بڑے اکشروں میں لکھا ہوتا ہے, کاپی رائٹ کا ٹھپا لگتا ہے اور اسے کسی بڑی سی لائبریری میں سہیج کر رکھ دیا جاتا ہے. جانکاری کو سہیجنے کا ہمارا نظریہ بس یہی ہے.
اور یہ نظریہ اس لیے ہے کیونکہ ہم ایک آدھونک دنیا میں رہتے ہیں. یہ ہمارا ایک ویوستھت ڈھانچہ ہے نا, ہمیں ہر چیز پر ایک نام چاہیے ہوتا ہے.
ہم مانتے ہیں کہ اگر کوئی وچار ہے تو وہ کسی ویکتی وشیش کی ہی سمپتی ہے, لیکن پراچین دنیا کو اس چشمے سے دیکھنا ہماری سب سے بڑی بھول ہو سکتی ہے.
اور یہی آج کے ہمارے اس گہن ادھیان کا مکھیہ وشے بھی ہے. آج ہم ڈاکٹر جان والٹن کی ریسرچ کے آدھار پر ایوب کی پستک, جسے ہم بک آف جاب بھی کہتے ہیں, اس کی تاریخ اور اس کے رچے جانے کی پرکریا کی گہرائیوں میں اترنے والے ہیں. اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ جو آدھونک ڈھانچہ آپ نے بتایا, یہ پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے.
بالکل ٹوٹ جاتا ہے,
کیونکہ پراچین دنیا کے بارے میں ہماری سب سے بڑی غلط فہمی یہی ہے کہ وہاں آج کی طرح کتابیں یا لیکھک ہوتے تھے. سچ تو یہ ہے کہ وہ دنیا ہماری اس دنیا سے بالکل ہی الگ تھی. تو آج کی اس چرچا کا ہمارا مشن یہی ہے کہ ہم ڈاکٹر والٹن کی ریسرچ کے ذریعے ایوب کی پستک کی رچنا اور اس کے سمے کال کی جو الجھی ہوئی گتھی ہے اسے سلجھائیں.
اور اس گتھی کو سلجھانے کے لیے نا, سب سے پہلے ہمیں اس دور کی سنسکرتی کو سمجھنا ہوگا. ہمیں اپنا یہ آدھومک چشمہ اتارنا ہوگا.
تو وہ سنسکرتی تھی کیسی؟
وہ ایک شرون پردھان سنسکرتی تھی, مطلب پوری طرح سے سننے پر آدھارت سماج. اس دنیا میں لوگ سن کر اور بول کر ہی جانکاری حاصل کرتے تھے اور اسے آگے بڑھاتے تھے. آج کی طرح پنوں پر لکھے شبدوں کی تلنا میں کسی ویکتی دوارا بولی گئی باتوں کا جو پربھاو تھا وہ کہیں کہیں ادھک ہوتا تھا. ان کے لیے لکھت شبد کوئی پراتھمک چیز نہیں تھے, بلکہ محض ایک انتم اپائی کی طرح تھے.
ٹھیک ہے, آئیے اسے سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ بات سچ میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے. ہم ہمیشہ یہ پوچھنے کے عادی ہیں کہ یہ فلاں کتاب کس نے لکھی.
ہاں, ہماری پہلی ورتی یہی ہوتی ہے.
لیکن ڈاکٹر والٹن کی ریسرچ سے یہ پتا چلتا ہے کہ پراچین کال میں جانکاری سہیجنے کے معاملے میں یہ سوال پوچھنا ہی غلط ہے. اگر وہاں کتابیں اور لیکھک تھے ہی نہیں تو پھر گیان آگے کیسے بڑھتا تھا؟
جانکاری کے لین دین کے لیے مکھیہ روپ سے دو الگ الگ بھومکائیں طے کی گئی تھیں. پہلے ہوتے تھے ادھیکار پراپت ویکتی, جنہیں ہم اتھارٹی فگرز کہہ سکتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جن کا کام بس بولنا, اپدیش دینا یا کوئی سندیش دینا ہوتا تھا. ان کے پاس سماج میں ایک رتبہ تھا.
دوسری بھومکا,
اور دوسرے ہوتے تھے شاستری یا اسکرائبس. ان کا کام محض ان بولی گئی باتوں کو لکھنا ہوتا تھا.
مطلب میرا مطلب ہے کہ یہ شاستری کوئی رچناتمک لیکھک نہیں تھے, وہ بس ایک طرح سے ریکارڈ رکھنے والے لوگ تھے.
بالکل, اور وہ آج کی طرح کاغذ کی سندر کتابوں پر نہیں لکھتے تھے. ان کے پاس مٹی کی پٹیاں ہوتی تھیں, پیپائرس یا پھر موم کی پٹیاں ہوتی تھیں,
جو کہ کافی مہنگی ہوتی ہوں گی, ہے نا.
تو اس کی ادھکانش کتابیں شروعات میں کتابیں تھیں ہی نہیں. وہ پیڑھیوں تک کیول موکھک بھاشن یا پرمپرا کے روپ میں زندہ رہیں. پھر سمے کے ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے دستاویزوں میں درج ہوئیں, جیسے کسی کا کوئی ویکتیگت بھجن ہو گیا, کچھ بھوشیہ ہو گئیں یا کوئی پرانی کہانی.
تو وہ ٹکڑے ٹکڑے میں تھیں.
ہاں, اور صدیوں تک اسی طرح چلنے کے بعد انتتہ انہیں کتابوں کے روپ میں سنکلت کیا گیا. مطلب کتاب بننے کی پرکریا اس پوری یاترا کے بالکل انت میں آتی ہے, شروعات میں نہیں.
یہ بہت ہی دلچسپ نظریہ ہے. اسے سمجھنے کے لیے کیا ہم آج کے کورٹ روم کا ادھارن لے سکتے ہیں؟
کورٹ روم, کیسے؟
جیسے عدالت میں ایک جج فیصلہ سناتا ہے یا کوئی گواہ کٹگھرے میں اپنی گواہی دیتا ہے, وہ دونوں سماج کے اتھارٹی فگر ہو گئے جن کی بات کا مہتو ہے, اور کونے میں بیٹھا جو سٹینوگرافر ہے وہ ان کی ہر بات کو بس ٹائپ کر رہا ہوتا ہے.
بالکل صحیح.
وہ سٹینوگرافر اس قانونی فیصلے کا لیکھک تو نہیں ہوتا نا, اس کا کام صرف ریکارڈ کرنا ہے. क्योंकि असली अधिकार, असली अथॉरिटी तो बोलने वाले की है।
अरे ये तो एकदम सटीक तुलना है। स्टेनोग्राफर दस्तावेज बनाता है, लेकिन उसमें उसका अपना कोई बौद्धिक अधिकार नहीं होता। प्राचीन दुनिया के शास्त्री भी बिल्कुल इसी तरह काम करते थे। और एक बात जो इस पूरे सिस्टम को और भी तार्किक बनाती है, वो है उस समय की साक्षरता दर।
साक्षरता मतलब लोगों का पढ़ा लिखा होना।
हाँ, उस समाज में साक्षरता यानी पढ़ना लिखना आना रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कोई जरूरी शर्त थी ही नहीं।
आज के समय में ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। मेरा मतलब, हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सिर्फ टेक्स्ट पढ़ते हैं, फोन पर, लैपटॉप पर, सड़कों पर लगे बोर्ड्स पर। बिना पढ़े हमारा एक दिन नहीं गुजर सकता।
लेकिन उस समय समाज का काम बिना पढ़े लिखे बहुत आराम से चल रहा था। डॉक्टर वॉल्टन इसे समझाने के लिए विदेशी भाषा का एक बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण देते हैं।
कैसा उदाहरण?
जैसे आज बहुत से लोग हाईस्कूल में कोई विदेशी भाषा सीखते हैं, मान लीजिए स्पैनिश या फ्रेंच सीख ली, लेकिन अगर वे उसका अपनी जिंदगी में कभी उपयोगी नहीं करते तो वे उसे पूरी तरह भूल जाते हैं।
हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है।
है ना? तो प्राचीन दुनिया में भी कुछ ऐसा ही था। कुछ लोगों को बुनियादी पढ़ना लिखना आता भी होगा थोड़ा बहुत, तो भी वे उसका इस्तेमाल नहीं करते थे। सब कुछ सुनने और बोलने पर ही निर्भर था।
तो फिर एक सवाल उठता है, अगर कोई आम इंसान पढ़ता ही नहीं था तो फिर इन शास्त्रियों की जरूरत ही क्या थी? वे इतनी मेहनत से मिट्टी की पट्टियों पर लिख किसके लिए रहे थे?
वे लिख रहे थे आधिकारिक रिकॉर्ड के लिए। वे बिल्कुल आज के वकीलों या नोटरी पब्लिक की तरह थे। जब किसी को कोई जमीन का सौदा करना होता था या कोई कानूनी दस्तावेज बनवाना होता था, कोई आधिकारिक फरमान जारी करना होता था, केवल तभी वे शास्त्रियों के पास जाते थे।
तो रोजमर्रा को कोई काम नहीं था?
बिल्कुल नहीं। कोई भी इंसान खाली समय में बैठकर कुछ भी यूं ही नहीं लिखता था। और सबसे बड़ी बात, ये जो दस्तावेज बनते थे ना, ये किसी पब्लिक लाइब्रेरी में नहीं रखे जाते थे।
तो फिर कहाँ रखे जाते थे?
ये शाही महलों या मंदिरों के आधिकारिक अभिलेखागार में, जिन्हें हम आर्काइव्स कहते हैं, वहां सुरक्षित रखे जाते थे। वहां आम लोगों की कोई पहुंच ही नहीं होती थी।
हाँ, एक मिनट, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर साक्षरता का आम लोगों के लिए कोई महत्व ही नहीं था और सब कुछ सदियों तक केवल मौखिक रूप से ही चलता था, तो फिर अय्यूब की पुस्तक इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा एक अपवाद या विरोधाभास लगती है।
हाँ, और यही डॉक्टर वॉल्टन का सबसे मुख्य बिंदु है,
क्योंकि उनकी रिसर्च कहती है कि ये किताब इस मौखिक परंपरा में फिट नहीं बैठती है ना।
एकदम सही, और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अय्यूब की पुस्तक ओल्ड टेस्टमेंट के उन गिने चुने बहुत ही कम अपवादों में से एक है जो वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो शुरुआत से ही एक किताब के रूप में गढ़ी गई थी।
पर हम ये बात इतने पक्के तौर पे कैसे कह सकते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अय्यूब की कहानी भी सदियों का मौखिक रूप से ही चली आ रही हो और किसी ने बहुत बाद में उसे ज्यों का त्यों लिख दिया हो।
ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इस किताब की जो संरचना है वो बहुत ही जटिल है। डॉक्टर वॉल्टन इसे एक उच्च स्तरीय साहित्यिक रचना यानी लिटरेरी कंस्ट्रक्ट मानते हैं। जब हम अय्यूब की पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें पात्रों के बीच लंबे लंबे भाषण हैं। अय्यूब और उसके दोस्तों के बीच जो संवाद है ना।
हाँ, वो काफी लंबे हैं।
हाँ, और वो बहुत ही परिष्कृत अलंकृत गद्य और बेहद जटिल काव्यात्मक रूप में है। इन कविताओं का एक खास पैटर्न है, एक लय है, और इसमें इस्तेमाल की गई शब्दावली वो उस दौर की सबसे कठिन शब्दावलियों में से एक है।
मतलब ये आम बोलचाल की भाषा तो बिल्कुल नहीं थी।
बिल्कुल नहीं। आम जीवन में कोई भी व्यक्ति बिना किसी तैयारी के तुरंत ऐसे इतने लंबे, इतने गहरे और जटिल काव्यात्मक भाषण दे ही नहीं सकता। ये मुमकिन ही नहीं है कि चार लोग एक जगह बैठे और अचानक से एक के बाद एक ऐसी कविताएं बोलने लगें जो एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ी हों।
तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि अय्यूब की कहानी भले ही पुरानी हो, लेकिन जो किताब आज हमारे सामने है वो किसी महान नाटककार द्वारा लिखी गई एक सोची समझी स्क्रिप्ट की तरह है।
हाँ, आप इसे वैसा कह सकते हैं
जैसे थिएटर का कोई नाटक होता है ना, जहां हर पात्र के संवाद बहुत सोच समझकर एक बड़े संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए गढ़े जाते हैं।
जी, हम इसे एक ड्रामा या एक बहुत ही सुव्यवस्थित साहित्यिक कृति कह सकते हैं। डॉक्टर वॉल्टन यह नहीं कह रहे हैं कि अय्यूब की कोई पारंपरिक कहानी पहले से समाज में मौजूद नहीं थी। अय्यूब शायद एक ऐतिहासिक व्यक्ति रहा होगा और उसके जीवन के संघर्षों की कहानी लोग मौखिक रूप से सुनाते भी होंगे, लेकिन जो दस्तावेज हमारे सामने है वो उस मौखिक कहानी का सीधा रिकॉर्ड नहीं है।
तो फिर वो क्या है?
किसी बहुत ही कुशाग्र मस्तिष्क ने, किसी बहुत ही समझदार व्यक्ति ने उस पारंपरिक कहानी को लिया और उसे एक बेहद बेहद कलात्मक और जटिल साहित्यिक ढांचे में पिरो दिया।
अगर ये इतनी जटिल और सोच समझकर रची गई साहित्यिक रचना है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसे लिखा कब गया? क्या इसे उसी समय गढ़ा गया था जब अय्यूब वास्तव में जीवित था?
इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें दो चीजों को बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग देखना होगा। पहला है व्यक्ति की समय रेखा और दूसरा है पांडुलिपि की समय रेखा।
दोनों में क्या क्या फर्क है?
डॉक्टर वॉल्टन जोर देकर कहते हैं कि घटनाओं के घटने की तारीख और उस पर आधारित किताब के रचे जाने की तारीख, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। अय्यूब एक व्यक्ति के रूप में बहुत ही प्राचीन समय का रहा होगा।
ये हम कैसे जानते हैं?
क्योंकि किताब में कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे विवरण हैं जो एक बहुत पुराने दौर की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए किताब में केसिता नाम की एक मुद्रा या पैसे की इकाई का जिक्र आता है।
केसिता?
हाँ, ऐतिहासिक रूप से ये मुद्रा केवल बहुत ही शुरुआती दौर में इस्तेमाल होती थी। बाद के समय में इसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। इसके अलावा किताब में कसदियों और सबाइयों के हमलावर गुटों का जिक्र है जो अय्यूब के जानवरों को लूट ले जाते हैं।
अच्छा,
इन कबीलों का इस तरह से हमला करना भी एक बहुत पुराने ऐतिहासिक काल से ही जुड़ता है।
तो कहानी की पृष्ठभूमि और उसमें इस्तेमाल किए गए कुछ प्रॉप्स, वो बहुत पुराने हैं। इसे स्पष्ट करने के लिए मैं एक उपमा देना चाहूंगा। क्या ये ऐसा है जैसे कोई आधुनिक फिल्मकार 2024 में रोमन साम्राज्य पर कोई नई फिल्म बनाए?
कैसे?
मतलब उस फिल्म की कहानी, कपड़े और तलवारें 2000 साल पुरानी होंगी, जैसे आपने वो केसिस्ता सिक्के का उदाहरण दिया।
हाँ।
लेकिन उस फिल्म को बनाने की जो तकनीक है, कैमरे का जो काम है और फिल्म का जो मुख्य विषय या फोकस है,
ये एकदम सही और प्रासंगिक तुलना है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो यही है कि फिल्मकार जानबूझकर पुराने तत्वों का इस्तेमाल करता है ताकि कहानी को एक खास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दी जा सके। अय्यूब की पुस्तक के साथ भी बिल्कुल यही हुआ है। व्यक्ति और उसकी पृष्ठभूमि प्राचीन काल से जुड़ी है, लेकिन इस पुस्तक का जो साहित्यिक फोकस है, जिस तरह से इसमें सवालों को उठाया गया है, वो बहुत बाद के समय का प्रतीत होता है। इसे एक शुरुआती दौर की सरल रचना नहीं माना जा सकता।
लेकिन जब हम इस किताब की रचना की तारीख तय करने की कोशिश करते हैं, तो एक और बड़ी उलझन सामने आती है। मैंने रिसर्च में पढ़ा कि इस किताब में कुछ ऐसी चीजों का जिक्र ही नहीं है जो प्राचीन इजरायली संस्कृति के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी।
हाँ, और इसी उलझन को गैर इजरायली पहेली कहा जाता है। सदियों से कई विद्वानों का ये तर्क रहा है कि चूंकि इस किताब में मूसा की वाचा, जिसे हम कवेनेंट कहते हैं, उनके कानून या किसी भी मंदिर का कोई उल्लेख नहीं मिलता, इसलिए ये किताब सीनाई पर्वत की घटनाओं से भी बहुत पहले लिखी गई होगी। उनका मानना था कि अगर ये किताब मूसा के बाद के दौर में लिखी गई होती, तो इसमें इन महत्वपूर्ण धार्मिक चीजों का जिक्र आना लाजमी था।
और एक बात जो मेरा ध्यान खींचती है वो ये है कि अय्यूब अपने परिवार के लिए खुद एक पुजारी के रूप में, एक प्रीस्ट के रूप में कार्य करता है।
हाँ, वो खुद बलियां चढ़ाता है।
बिल्कुल, जबकि बाद के इजरायली कानूनों के हिसाब से पुजारियों का एक अलग वर्ग होता था, है ना? कोई भी आम इंसान खुद ये काम नहीं कर सकता था।
एकदम सही। ये सारे तथ्य पहली नजर में यही इशारा करते हैं कि ये किताब बहुत पुरानी, यानी सिनाई के कानूनों से पहले की है। लेकिन डॉक्टर वॉल्टन यहाँ एक बहुत ही गहरा और अलग नजरिया पेश करते हैं।
वो क्या है?
वे समझाते हैं कि इन इजरायली धार्मिक प्रतीकों के ना होने का कारण ये नहीं है कि ये किताब बहुत पुरानी है। इसका कारण बहुत सीधा सा है। अय्यूब एक इजरायली था ही नहीं।
हाँ, एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब है। अगर वो इजरायली नहीं था तो वो था कौन?
किताब के बिल्कुल शुरुआत में ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अय्यूब ऊज देश का रहने वाला था और ये ऊज देश इजरायल का हिस्सा नहीं था।
अच्छा।
और उस समय इजरायल के बाहर की जो जो अन्य जनजातीय संस्कृतियां थी, उनमें किसी परिवार के मुखिया का अपनी ही परिवार के लिए पुजारी के रूप में कार्य करना बिल्कुल बिल्कुल आम बात थी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अय्यूब की कहानी में इसराइली कानूनों, मंदिरों या वाचा का जिक्र होने का कोई तुक ही नहीं बनता, क्योंकि वो संस्कृति का हिस्सा ही नहीं था।
बिल्कुल,
मंदिर या कानून का उल्लेख ना होना ये साबित नहीं करता कि ये किताब बहुत पुरानी है। ये सिर्फ ये बताता है कि हम एक विदेशी व्यक्ति की कहानी पढ़ रहे हैं।
एकदम सही पकड़े आप। कहानी की सेटिंग इसराइल के बाहर की है, इसलिए उसमें इसराइली कानून नहीं दिखते।
लेकिन यहाँ मैं थोड़ा चुनौती देना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर अय्यूब एक बाहरी व्यक्ति था, एक गैर इसराइली, तो इसराइली लोगों ने एक बाहरी व्यक्ति पर इतनी परिष्कृत, इतनी लंबी और जटिल किताब क्यों लिखी? क्या वे अपने खुद की संस्कृति के किसी नायक के बारे में नहीं लिखना चाहते थे? उन्हें एक विदेशी के जीवन और उसके संघर्षों में इतनी गहरी दिलचस्पी क्यों थी?
इस सवाल का जवाब उस संदेश में छिपा है जो यह किताब देना चाहती है। डॉक्टर वॉल्टन बहुत खूबसूरती से समझाते हैं कि भले ही मुख्य पात्र विदेशी हो, लेकिन पुस्तक का लक्षित दर्शक वर्ग यानी टारगेट ऑडियंस वो इसराइली ही था। यह किताब खास तौर पर इसराइलियों के लिए ही लिखी गई थी।
ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। वे अपने दर्शकों के लिए एक विदेशी नायक क्यों चुनेंगे?
क्योंकि अगर नायक एक इसराइली होता ना, तो उसकी कहानी तुरंत तुरंत मूसा के कानूनों और वाचा से जुड़ जाती।
अच्छा, कैसे?
तब लोग सोचते कि अगर अय्यूब के साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो जरूर उसने कोई नियम तोड़ा होगा, कोई पाप किया होगा। लेकिन लेखक इन धार्मिक बहसों से पूरी तरह बचना चाहता था।
समझ रहा हूँ।
वो एक ऐसा पात्र चाहता था जो इन कानूनों के दायरे से बिल्कुल बाहर हो, ताकि वो मानव जीवन के सबसे गहरे सवाल पूछ सके कि क्या दुनिया में वाकई न्याय है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है।
तो उसने एक बाहरी व्यक्ति को चुना।
हाँ, एक गैर इसराइली पात्र को चुनकर लेखक ने इस पूरी कहानी को एक सार्वभौम, एक यूनिवर्सल रूप दे दिया।
ओह, अब ये बात पूरी तरह से समझ में आ रही है। लेखक को एक ऐसा मंच चाहिए था जहां वो इंसानी दुख और ईश्वर के न्याय पर खुलकर चर्चा कर सके, बिना किसी धार्मिक कानून के नियम कायदों में उलझे।
बिल्कुल सही। और इस दृष्टिकोण से देखने पर हम समझ पाते हैं कि इस किताब की रचना की तारीख का अनुमान हम अय्यूब के जीवन की प्राचीन घटनाओं के आधार पर नहीं लगा सकते। जब हम ये मानते हैं कि ये इसराइलियों को उनके अपने विश्वासों पर सोचने के लिए मजबूर करने वाली एक जटिल साहित्यिक कृति है, तो इसकी रचना की तारीख घटनाओं के समय से काफी बात की ही प्रतीत होती
तो,
है।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा के अहम हिस्सों को समेटें, हमने देखा कि प्राचीन दुनिया में लेखकों और किताबों को लेकर हमारी जो आधुनिक समझ है वो काम नहीं आते।
बिल्कुल नहीं आती।
हमने समझा कि कैसे अय्यूब की पुस्तक उस मौखिक परंपरा के बीच एक दुर्लभ साहित्यिक रचना है। हमने व्यक्ति की प्राचीनता और पांडुलिपि के बाद में रचे जाने के बारीक अंतर को पहचाना, और अंत में हमने ये पहेली भी सुलझाई कि मुख्य पात्र के विदेशी होने के बावजूद ये किताब अपने लक्षित दर्शकों के लिए एक बहुत गहरा अर्थ रखती थी।
जी, ये पूरा सफर बस यही दिखाता है कि प्राचीन ग्रंथों को समझने के लिए हमें उस दौर के चश्मे से ही चीजों को देखना पड़ता है।
तो अंत में ये सवाल उठता है कि अगर इस किताब की सटीक तारीख पर इतनी बहस है, इसके लेखक का नाम कोई नहीं जानता और इसका मुख्य पात्र भी एक अलग ही संस्कृति से आता है, तो हम आज इस किताब का इतना गहराई से अध्ययन कर ही क्यों रहे हैं? इस पूरे गहन अध्ययन का अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है?
डॉक्टर वॉल्टन का सबसे महत्वपूर्ण और गहरा निष्कर्ष यहीं पर उभर कर आता है। वे कहते हैं कि अय्यूब की पुस्तक मूल रूप से कोई ऐतिहासिक क्रॉनिकल नहीं है जो महज किसी के जीवन का ब्यौरा दे रही हो। ये ज्ञान साहित्य, जिसे हम विजडम लिटरेचर कहते हैं, उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
और ज्ञान साहित्य का मुख्य उद्देश्य घटनाओं का सिर्फ रिकॉर्ड रखना नहीं होता है ना?
बिल्कुल नहीं। ज्ञान साहित्य की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसकी सच्चाइयां कालातीत होती हैं, यानी टाइमलेस। वे किसी एक समय, एक स्थान या एक संस्कृति के दायरे में कभी नहीं बंधती।
यानी मानव स्वभाव और दुख को लेकर जो बात हजारों साल पहले सच थी, वो आज भी उतनी सच है।
हाँ, डॉक्टर वॉल्टन स्पष्ट करते हैं कि अंततः इन बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि ये कहानी शुरू में मौखिक थी या लिखित। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये किताब शुरुआती दौर की है या या बहुत बाद के दौर की, और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका मुख्य पात्र इजरायली था या गैर इजरायली। इस किताब का असली अधिकार, इसकी असली ताकत, इसकी ज्ञान शिक्षाओं में निहित है
जो सवाल इसमें पूछे गए हैं।
बिल्कुल, दुख, ईश्वर के न्याय और बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के सही रास्ते पर चलने के जो गहरे सवाल इस किताब में उठाए गए हैं, वही इसका असली और मुख्य उद्देश्य है।
ये एक बहुत ही स्पष्ट और खूबसूरत नजरिया है। मतलब हमें इसकी तारीखों, इसके लेखक या इसकी भौगोलिक सीमाओं की अकादमिक बहस में उलझने के बजाय इसके उस गहरे संदेश पर ध्यान देना चाहिए जो ये पूरी पूरी मानवता को देना चाहती है।
शत प्रतिशत। और यही कारण है कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी ये किताब दुनिया भर के लोगों के लिए हर दौर में उतनी ही प्रासंगिक बनी हुई है जितनी वो शायद उस प्राचीन उस श्रवण प्रधान संस्कृति के पहले श्रोताओं के लिए रही होगी।
ये पूरी चर्चा हमें अपनी खुद की दुनिया को भी एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती है। हमने शुरुआत में बात की थी कि उस प्राचीन दुनिया में बोली गई बातों का महत्व पन्नों पर लिखे शब्दों से कहीं कहीं अधिक था।
हाँ, बिल्कुल था।
वहाँ एक इंसान बोलता था और पूरा समाज सुनता था, और बहुत बहुत गहराई से सुनता था। उस सुनने में एक जीवित अधिकार, एक लिविंग अथॉरिटी होती थी। लेकिन जरा सोचिए, आज की हमारी दुनिया पूरी तरह से इसके उलट है।
सही कह रहे हैं आप।
हमारी दुनिया टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट्स और अनगिनत लिखित सूचनाओं के शोर से भरी पड़ी है। हम हर दिन हजारों शब्द पढ़ते हैं। क्या हम सिर्फ पढ़ने और लगातार स्क्रॉल करने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमने सुनने की वो कला ही खो दी है?
ये सच में एक बहुत गहरा विचार है।
शायद कुछ शाश्वत ज्ञान ऐसे होते हैं जो सिर्फ पन्नों पर छपे शब्दों को सरसरी तौर पर पढ़ लेने से समझ नहीं आते। शायद वे बातें तभी अपना पूरा अर्थ खुलती हैं जब हम रुककर उन्हें ध्यान से सुनते हैं और उन पर गहराई से मनन करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उस प्राचीन समाज के लोग किया करते थे। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको गहराई से सोचना चाहिए। आज के इस गहन अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नई जानकारियों के लिए हमेशा जिज्ञासु बने रहें, सवाल पूछते रहें और ज्ञान की इन असीम गहराइयों में यूं ही गोता लगाते रहें।